हेम शैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि।
कल की कथा में युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी के मुख से सुना कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ये सब पंच तत्व में लीन हो गए, अग्नि में जल गए। युधिष्ठिर को इस बात का दुख हुआ कि वन में जो आग लगी उससे हमारे माइत चले गए। नारद जी ने कहा कि वो आग यज्ञ से पैदा हुई थी, आवनी अग्नि कर रहे थे तो वो अग्नि जाकर के फैल गई और उसकी अग्नि से वन में आग लगा, तो वो यज्ञ की अग्नि में ही समाप्त हुए, तो संतोष हुआ। अब ये मौसल पर्व है, अभी तक तो आश्रम वासिक पर्व था, मौसल मूसल था ना, जिससे सारे यदुवंशी नष्ट हुए थे, उस संबंध से ये कथा कही जा रही है। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, महाभारत युद्ध के बाद जब 36 वर्ष प्रारंभ हुआ, 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ, तो राजा युधिष्ठिर को कई प्रकार के अपशकुन दिखाई दिए। भारी तूफान लिए, प्रचंड आंधियां चलने लगी, उससे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी, पक्षी दाहिनी ओर मंडल बनाकर उड़ते हुए दिखाई देते थे, बड़ी बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया और समस्त दिशाएं कोहरों से आच्छादित हो गईं। आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसाती हुई उल्काएं गिरने लगी, सूर्य मंडल धूल से आच्छन्न हो गया, उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहा और सूर्य मंडल के अंदर कबंध माने बिना सिर के धड़ दिखाई देते थे। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोचर होते थे, उनके किनारों में लाल, काला और धूसर ये तीन रंग दिखाई देते थे। इसके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर को ये खबर मिली कि समस्त वृष्टियों का संहार हो गया, केवल कृष्ण और बलराम ही उसके आघात से बचे हुए हैं। ये खबर मिली, यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। युधिष्ठिर जी ने बुला करके पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से वृष्णिवंशियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी भारी वेदना हुई, वे दुख और शोक में डूब गए और हताश हो मन मारकर बैठे रहे, अब क्या करें। जन्मेजय ने पूछा कि हे वैशंपायन जी, वृष्णि, अंधक और भोजवंश के वीरों को किसने शाप दिया और क्यों शाप दिया, उनका कैसे संहार हो गया, इसको आप विस्तार के साथ सुनाओ। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया कि राजन, एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व तथा तपोधन नारद जी द्वारिका में गए, उन्हें देखकर दैव के मारे हुए सारण आदि वीर सांब को स्त्री वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए सांब को, और दैव के मारे का मतलब भाग्य के कारण से सारण आदि जो वीर योद्धा थे वो सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके संतों के पास ले गए, ऋषियों के पास, बोले महर्षियों ये महातेजस्वी बब्रू की स्त्री है, बब्रू पुत्र के लिए बड़ा लालायित रहता है, आप लोग अच्छी तरह समझकर बताओ कि इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। ऐसा कहकर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे ऋषि मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, जब ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे को देखते हुए बोले, अरे मूर्ख हो, ये तो कृष्ण का पुत्र सांब है, वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मुसल पैदा करेगा जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालेंगे, केवल बलराम और कृष्ण पर इनका प्रभाव नहीं चलेगा। संतों के साथ ऋषि मुनियों के साथ ऐसी ठगी करते हो, बलराम जी तो स्वयं अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाण से बींध डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। देखो भागवत में उल्टा आता है, इसमें उल्टा है। और भगवान श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें बाणों से बींध देगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। ये समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृष्णि वंशियों को भी बता दिया। वे सब का अंत जानते थे, इसलिए यादवों से यह कहकर कि ऋषियों की बात तो अवश्य सत्य होगी, नगर में चले गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के ईश्वर है तथापि उन्होंने यदुवंशियों के इस अंतकाल को पलटना नहीं चाहा। दूसरे दिन सांब ने मूसल उत्पन्न किया। यादवों ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दी। यह सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद उग्रसेन श्री कृष्ण बलभद्र और बब्रू की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी नगरवासी वृष्णिवंशी और अंधक वंशियों के यहाँ शराब और मदिरा न तैयार करें। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय तैयार करेगा वो जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर सारे द्वारिकावासी मनुष्यों ने राजा के भय से मदिरा बनाने का विचार छोड़ दिया। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे तथापि काल प्रतिदिन उन सब के घरों में चक्कर लगाया करता था। वैसे तो काल सभी के पास रहता है, सभी के शरीरों में और सभी पदार्थों में सभी जगह प्रवेश किया हुआ है। वो काल भी तो भगवान का रूप है। वो काल भयंकर और विकट था। उस काल के शरीर का रंग काला और पीला था। वह मूंड मुंडाए हुए पुरुष के रूप में घूम घूम कर वृष्णियों के घरों को देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाता। उस काल को देखने पर बड़े बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते, परंतु काल कैसे मरे कोई बींद नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत है। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी, चूहे इतने बढ़ गए थे कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के केश और नख कुतर कुतर कर खा जाया करते थे। यदुवंशियों के घरों में सारिकाएं निरंतर चैं चैं किया करती थी, दिन हो या रात एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज बंद नहीं होती थी। सारस उल्लुओं और बकरों और गिदड़ों की सी बोली बोलने लगे थे। काल की प्रेरणा से वृष्णि और अंधकों के घरों में सफेद पंख और लाल पैरों वाला कबूतर घूमने लगा। गौओं के पेट से गधे पैदा होने लगे, खच्चरों से हाथी पैदा होने लगे, कुतियों से बिलाव पैदा होने लगे, नेवलों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता पितर ब्राह्मण गुरुजन सबका अपमान करते थे, केवल बलराम और श्री कृष्ण उनके तिरस्कार से बचे हुए थे। जब श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि होती थी, उस समय यदुवंशियों के घरों में चारों ओर से गधों के रेंकने की भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार काल के विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का योग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरों, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था, आज 36 वर्ष के बाद हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग आ गया है। इस काल के विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरों, महाभारत के समय जैसा योग लगा था, अब 36वें वर्ष के बाद हम लोगों का संहार करने के लिए भी वही योग आ पहुंचा है। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे और सोचते सोचते उनके मन में ये बात आई कि जान पड़ता है बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गांधारी ने आर्त भाव से यदुवंशियों के लिए जो शाप दिया था उसके पूर्ण होने का समय 36वां वर्ष आ गया है। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का शाप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा से राजपुरुषों ने सारे नगर में घोषणा कर दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र की चलने की तैयारी करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वारिका की स्त्रियां रात को सपने में देखा करती थी कि सफेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई और सभी का सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है। सुहागिनी माताओं के यहाँ जो मांग का चिन्ह उसको समेटती जा रही है, उनकी जो चूड़ियां हैं उनको पकड़ पकड़ करके फेंकती जा रही है, सारे सौभाग्य के चिन्ह समाप्त कर रही है। पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर गीध आकर वृष्णि और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृहों में पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस उनके आभूषण क्षत्र ध्वजा और कवच चुरा कर भागते देखे जाते हैं। ये सपने की बात है। तदनंतर वृष्णि और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ घोड़े और हाथियों पर सवार होकर नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। योग वेत्ता उद्धव जी ने जब यह सुना कि यदुवंशी वीर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सब से विदा लेकर चले गए। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उस महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रोकना उचित नहीं समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्यकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास किया। जब सब लोग प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर आकर निवास करने लगे, तो इन सब से मिलने के लिए उद्धव जी वहां आए और सब से मिलकर विदा हो गए। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा उद्धव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रोकना उचित नहीं समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्यकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर करते हुए कहा, एक कृतवर्मा हार्दिक की अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दों की सी दशा में सोए हुए मनुष्यों की तेरी तरह हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं कर सकते। सात्यकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान किया और उनकी बात का अनुमोदन किया। इतना सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बाईं हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे भूरी श्रवा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे, उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उनकी नृशंसतापूर्ण हत्या कैसे की। उसकी बात को सुनकर के सात्यकी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और वे खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। यूं कहकर सात्यकी श्री कृष्ण के पास से झपट कर आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कृतवर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस समय सात्यकी को रोकने के लिए दौड़े, सात्यकी क्या करते हो। इतने में ही काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एक मत होकर सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्यकी के ऊपर धावा करते हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्यकी को बचाने के लिए बीच में कूद कर भोज वंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्यकी अंधक वंशों का साथ भिड़ गए और अपनी भुजाओं के बल से क्षोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त नहीं कर सके और अंत में भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी को मारा गया देखकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में भरकर एक मुट्ठी एरक उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो जो सामने आए उन सबको उसी मूसल से मौत के घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भोज, शीनी और वृष्णिवंश के वीर उस हंगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से धराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरक का नाम घास लेता उसके हाथ से वह वज्र के समान दिखाई पड़ती थी। जन्मेजय, यह सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था कि तिनका भी मूसल के रूप में परिणित हो गया। जिस किसी तृण का प्रहार किया जाता वह अभेद्य वस्तु का भी भेदन कर देता था। उसको लेकर पुत्र पिता के और पिता पुत्र के प्राण ले रहे थे। मतवाले यदुवंशी आपस में लड़कर धराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग रहे थे, फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेश, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो क्या था, सब जगह क्रोधाग्नि भड़क उठी और शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। यह देख महातेजस्वी बब्रू और दारुक उनके पास आकर बोले, भगवान अब इनका विनाश हो गया। इनमें अधिकांश आपके हाथों से मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हुए हों। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, तदनंतर दारुक, बब्रू और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए और थोड़े दूर जाने पर अत्यंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारिका के लिए रवाना हो जाएं। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर कुरुदेश को चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने बब्रू को अपने पास खड़े देखकर कहा, जाओ आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारिका को चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उन स्त्रियों की हत्या कर दें। बब्रू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ज्योत्यों द्वारिका के लिए प्रस्थित हुए। त्यों ही ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न वह मूसल एक व्याध के लोमय मुदगर में जड़ा हुआ उनके ऊपर आकर गिरा, जिसकी चोट से सहसा उनकी मृत्यु हो गई। बब्रू को मरा हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भैया आप यहाँ रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारिका में गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात आप अर्जुन की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है, उन वीरों से सुनी हुई ये द्वारिकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जा सकती। यूं कहकर पिता को प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई दिया। विलाप करती हुई युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र इस नगर में आने वाले हैं, वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकांत में बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण के देखते देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत विशाल सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा लाल वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। कर्कोटक नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, पृथुश्रवा नाग, अरुण नाग, कुंजर नाग, मिश्री नाग, शंख नाग, कुमुद नाग, पुंडरीक नाग, धृतराष्ट्र नाग, लाद नाग, क्राथ नाग, शितिकंठ नाग, उग्र तेजा नाग, चक्रमंद नाग, अतिशंड नाग, दुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का अत्यंत भावपूर्वक अभिनंदन, स्वागत एवं अर्घ्य अर्पित किया। भाई बलराम के इस प्रकार परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते भी एक जगह भूमि पर बैठ गए और विचार करने लगे। पूर्व काल में गांधारी देवी ने जो उन्हें शाप दिया था उसको याद करके उन्होंने अब अंतर्धान होने का बड़ा अच्छा समय समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेत्ता और अविनाशी थे, तो भी तीनों लोकों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया ताकि भगवान की इस लीला से सबको प्रेरणा मिले और महायोग माने समाधि का अवलंबन करके पृथ्वी पर लेट गए। उस समय एक जरा नाम वाला व्याध माने शिकारी मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होते हुए सोते हुए श्री कृष्ण के पैरों में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित चार भुजा वाले पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ, लज्जित हुआ और बड़ी ग्लानी हुई। उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा, क्षमा याचना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और कांति से आकाश और पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्व माने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वेदेव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित प्रमुख गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी, जगत को उत्पन्न करने वाले, अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रमेय पद को प्राप्त हो गए। उनकी परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन और इंद्र ने भी प्रेम वश उनका स्वागत सत्कार किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, दारुक ने कुरुदेश में पहुंचकर महारथी पांडवों से ये समाचार कह सुनाया कि समस्त यदुवंशी आपस में मुसलों की मार से नष्ट हो गए। वृष्णि, भोज, अंधक और कुकुरवंश के वीरों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ा शोक हुआ। उनका हृदय आतंकित हो गया। कृष्ण के प्रिय मित्र सखा अर्जुन को तो सहसा इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तुरंत अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए चल दिए। दारुक के साथ वृष्णियों के निवास स्थान पर पहुंचकर अर्जुन ने द्वारिका नगरी विधवा स्त्री के भांति शोभाहीन अवस्था में देखा। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां अर्जुन को देखते ही विलख विलख कर रोने लगी। उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया। उन पर दृष्टि डालते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पति और पुत्रों से हीन हुई उन अनाथ अबलाओं की ओर उनसे देखा ही नहीं गया और उनका आर्तनाद उनसे सुना नहीं गया। द्वारिका नगरी और श्री कृष्ण की पत्नियों की ये दुर्वस्था देख स्वयं अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और आंसुओं की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा एवं रुक्मणी आदि पटरानियों ने अर्जुन के निकट आ जाने पर शोक के कारण वे भी गिर पड़ी और अर्जुन को घेर कर जोर जोर से रोने लगी। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को उठाकर सोने के सिंहासन पर बैठाया और चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गई। उस समय पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करके उनके विषय की अनेकों बातें सुनाई और समझा बुझाकर उन दुखिनी स्त्रियों को सांत्वना दी। इसके बाद वे अपने मामा के पास मिलने के लिए महल में गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि महात्मा वसुदेव जी जिस पुत्र को लेकर बड़े गौरवान्वित होते थे आज उसी पुत्र के शोक के अंदर संतप्त होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। मामा की दशा देखकर आंसू बहाते हुए अर्जुन ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींच कर छाती से लगाया और अपने समस्त पुत्रों, भाइयों, पौत्रों, दोहित्रों और मित्रों को याद कर करके वे रोने लगे। वसुदेव जी बोले, अर्जुन सुनो, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों राजाओं पर विजय पाई थी उन्हें आज नहीं देख लेने के कारण मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान करते थे, वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में उन दो को ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम स्वयं भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे, वे कृष्ण के स्नेह भाजन पुत्र प्रद्युम्न और सात्यकी ही इस समय वृष्णि वंशियों के विनाश के प्रधान कारण हुए। अर्जुन ने कहा, मामा जी, मुझे इस विनाश का प्रारंभ से कारण बताइए। मैं ये विनाश सुनकर आश्चर्य में डूबा हुआ हूँ। इतने अच्छे इस वंश में जहाँ श्री कृष्ण ने अवतार लिया, बलराम जी ने अवतार लिया, आखिर ये वंश इस प्रकार कैसे नष्ट हो गया, इसको आप मुझे विस्तार से सुनाओ। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, अर्जुन अब तुम इसका विस्तार सुनो, कल से इसका विस्तार करेंगे।
कृष्ण 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 ओ हरे राम 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 हरे हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे हरे
ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ओ हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
राम राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ओ हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे श्यामवर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय
आनंद कंद भगवान
की जय